अगली सुबह घर में एक अजीब सी खामोशी थी। रात दोनों ने एक ही बिस्तर पर बिताई थी, लेकिन जैसे दो अजनबी एक कमरे में मौजूद हों। श्यामली की आंखें रात भर ठीक से नहीं लगी थीं। सुबह जब वो उठी तब भी उसके दिल पर वही बोझ था। वो तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। दूसरी तरफ विश्वनाथ भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। कमरे में सिर्फ अलमारी खुलने बंद होने और कपड़ों की सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो तैयार होते होते ही दोनों की आधी बातचीत हो जाती थी, कभी मजाक, कभी छेड़खानी, कभी दिन भर की योजनाएं। लेकिन आज दोनों चुप थे। विश्वनाथ आईने के सामने खड़ा अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसका ध्यान पूरी तरह वहीं था। तभी श्यामली की नज़र उसके कॉलर पर गई। कॉलर का एक कोना अंदर मुड़ा हुआ था। पहले की तरह सहजता से वो उसकी तरफ बढ़ी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे। उसने हाथ बढ़ाकर कॉलर ठीक कर दिया। विश्वनाथ का हाथ वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक दोनों की नज़रें आईने में एक दूसरे से मिली। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। श्यामली ने तुरंत नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके हाथ अब भी कॉलर के पास थे। ये ठीक नहीं था, उसने धीरे से कहा। विश्वनाथ कुछ नहीं बोला। उसकी नज़रें आईने में सिर्फ श्यामली पर टिकी थीं। रात की सारी कड़वाहट के बावजूद वो सच था कि ये वही औरत थी जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल बिताए थे, जिसकी हंसी उसके दिन की शुरुआत बनती थी, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी सारी थकान उतर जाती थी। और शायद इसी वजह से उसके भीतर का संघर्ष और बढ़ता जा रहा था। दिल उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जबकि दिमाग लगातार सवाल उठा रहा था। श्यामली ने कॉलर ठीक करके हाथ पीछे खींच लिया। हो गया। वो मुड़ने लगी, लेकिन उसी पल उसका पल्लू विश्वनाथ की घड़ी में उलझ गया। वो अचानक रुक गई। विश्वनाथ भी ठिठक गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे, इतने करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थीं। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। श्यामली का दिल तेजी से धड़कने लगा। विश्वनाथ ने नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाया। उसकी आंखों में दर्द था, उलझन थी, और कहीं न कहीं वही पुराना प्रेम भी था जिसे वो पूरी तरह मिटा नहीं पा रहा था। श्यामली की आंखें भी नम हो गईं। आप मुझसे इतने दूर क्यों हो गए हैं, उसने धीमी आवाज में पूछा। विश्वनाथ के पास जवाब नहीं था, या शायद जवाब था लेकिन वो बोलना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से पल्लू छुड़ाया, फिर एक कदम पीछे हट गया, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि उसे दूरी बनाकर रखनी है। श्यामली का दिल फिर टूट गया। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं वही हूं जो कल थी, जो पहले थी, फिर ऐसा क्या बदल गया? विश्वनाथ ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी नज़रें कठोर हो गईं, क्योंकि ये सवाल वही था जिसका जवाब वो खुद भी ढूंढ रहा था। हर चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, उसने ठंडी आवाज में कहा। श्यामली स्तब्ध रह गई। आप फिर वही बातें कर रहे हैं, कम से कम मुझे बताइए तो सही कि मेरी गलती क्या है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार विश्वनाथ ने खुद को उससे दूर कर लिया। वो अलमारी बंद करते हुए बोला, मुझे देर हो रही है और मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना। बहस? श्यामली की आवाज़ भर्रा गई। मैं अपने पति से वजह पूछ रही हूँ, बहस नहीं कर रही। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। आखिरकार विश्वनाथ ने अपना ब्रीफकेस उठाया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। श्यामली वहीं खड़ी थी, टूटी हुई, उलझी हुई, और उसकी आंखों में वही सवाल थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। एक पल के लिए विश्वनाथ का दिल डगमगा गया। उसे महसूस हुआ कि शायद वो जल्दबाजी में सब कुछ खराब कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में फिर वही तस्वीरें घूम गईं और उसका चेहरा फिर सख्त हो गया। ऑफिस के लिए लेट मत होना, उसने सिर्फ इतना कहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। श्यामली वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। उसे आज भी समझ नहीं आया था कि आखिर उसकी गलती क्या थी, लेकिन एक बात साफ थी, विश्वनाथ उससे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो खुद भी भीतर से टूट रहा था, और यही अनकहा दर्द उनके रिश्ते को हर गुजरते दिन के साथ और मुश्किल बनाता जा रहा था। ऑफिस पहुंचने के बाद भी विश्वनाथ का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके सामने फाइलों का ढेर रखा था, लैपटॉप खुला हुआ था, मीटिंग्स की सूची भी तैयार थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार स्क्रीन से हटकर खिड़की के बाहर चली जाती। आज पहली बार उसे अपना ही केबिन अजीब लग रहा था। वो कुर्सी पर पीछे से टिकाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंखें बंद करते ही काम नहीं बल्कि श्यामली याद आ गई। वो शामली जो हर सुबह उसकी टाई ठीक करते समय मुस्कुरा देती थी, जो उसके लिए लंच पैक करते हुए 10 बार पूछती थी कि खाना पूरा खाओगे ना, जो रात को उसके देर से आने पर नाराज भी होती थी और चिंता भी करती थी। विश्वनाथ के सीने में एक टीस उठी। उसने गहरी सांस ली। अगर सच में कुछ नहीं है तो, ये सवाल अचानक उसके मन में आया और उसके साथ ही अपराध बोध की एक लहर भी। उसे सुबह का शामली का चेहरा याद आ गया, उसकी भीगी आंखें, उसकी टूटी हुई आवाज। वो बार बार पूछ रही थी कि उसकी गलती क्या है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच तो ये था कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ कुछ तस्वीरें, कुछ अधूरे संयोग और बहुत सारे सवाल। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वो सचमुच जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, शायद आर्यन और शामली के बीच वैसा कुछ था ही नहीं जैसा उसका दिमाग बना रहा था। आखिर दोनों सालों से एक दूसरे को जानते थे, घर के लोग थे, करीबी थे। शायद उसने एक सामान्य पल को गलत अर्थ दे दिया। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन तभी दिमाग ने फिर वही तस्वीर सामने ला दी। एल्बम की पुरानी तस्वीरें, कॉलेज के दिन, उनकी हंसी, उनकी नजदीकियां, और फिर कल शाम का वो दृश्य, आर्यन का शामली के पास खड़ा होना, उसे संभालना, उन दोनों का एक साथ होना। विश्वनाथ ने आंखें खोल दी, उसकी मुट्ठियां अनजाने में भींच गईं। अगर कुछ नहीं था, वो मन ही मन बुदबुदाया, तो मुझे कभी बताया क्यों नहीं? यही सवाल उसे सबसे ज्यादा खा रहा था। शायद रिश्ते से ज्यादा उसे छिपी हुई बातों का डर था। जिस औरत को उसने अपनी दुनिया बना लिया था, जिस लड़के को उसने माँ के जाने पर दोनों का प्यार दिया था, आज उन्हीं दोनों को देखकर उसके भीतर अजनबी बन पैदा हो रहा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। दिल बार बार कह रहा था कि शामली पर भरोसा करो, लेकिन घायल भरोसा इतनी आसानी से वापस नहीं आता। विश्वनाथ कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। नीचे शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था, लेकिन उसके भीतर समय जैसे रुक गया था। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, काश कोई उसे सच बता देता, चाहे वो सच उसके पक्ष में हो या उसके खिलाफ, क्योंकि ये अनिश्चितता अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी।